क्या आपने उस लड़की को देखा है जो बर्फ से जमी सीढ़ियों से उतरती है, बर्फ के मैदान पर चलने लगती है, उसके बूट से आती आवाज सुनी है, उन पदचापों और पदचिन्हों पर चलते हुए? क्या आपने बनो ज्योत्सना का वह पत्र नहीं पढ़ा जो अपने चेहरे पर लिए वह घूमती रही, कभी लिख नहीं सकी? वैसे भी इस दौर में लिखे गए तमाम पत्रों पर बर्फ की परतें जम गई हैं। जूतों के इन निशान को देख कौन कह सकता है उमर खालिद लौट गया है सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका लेकर। उमर, तुमने फरवरी की दिल्ली कितने दिनों से नहीं देखी है? पत्तों के उतर जाने के बाद इन पेड़ों को कब से नहीं देखा है? तुम्हारी जेल की दीवारों पर पतझड़ आते हैं क्या? कोई पत्ता उड़कर तुम्हारे बिस्तर तक आया है? अदालत की दीवारों पर तो पतझड़ आते हैं, यहाँ के पत्ते उड़कर किसी वकील की कार में बैठ जाते हैं, तीन मूर्ति लेन में किसी जज के घर के बाहर गिरे पत्तों में मिल जाते हैं। पतझड़ में पत्ते भी तुम्हारी याचिका की तरह लौट जाते हैं उसी मिट्टी में जहां से खाद पानी लेकर वे पेड़ों की फुनगी तक पहुंचे थे। दिल्ली के इन शाही पेड़ों को कभी तो बुरा लगता ही होगा जब कोई इनकी छाया से निकलकर धूप में बैठ जाता होगा। दिल्ली में एक लकड़हारा आया है, उसकी आहट से पेड़ों में दहशत छा जाती है, पत्ते अपने साए से सहम जाते हैं, फलों के रस सूख जाते हैं, लकड़हारे का आदेश जारी हो चुका है, पेड़ रहेंगे मगर उसकी छाया नहीं रहेगी, याचिकाएं पेश होंगी, सुनवाई नहीं होगी। तुम्हारी जैसी सभी याचिकाओं को दिल्ली के पेड़ों पर टांग देना चाहिए, यूं ही जैसे दिल्ली में जगह जगह G20 के पोस्टर अब भी टंगे मिल जाते हैं। अदालतों के आने के पहले इन पेड़ों के नीचे पंच बैठा करते थे, बाद में इन पेड़ों को काटने की पंचायत इस दिल्ली में होने लगी। क्या तुम्हें पता है कि इन पेड़ों पर कितने फैसले हुए? 1857 की दिल्ली में हजारों लोगों को टांग कर तोप से उड़ा दिया गया। इन्हीं पेड़ों पर हिंदू मुसलमान सब टांगे गए, लटकाए गए और तोप से उड़ा दिए गए। आज भी यही पेड़ अदालतों के काम आ रहे हैं। पेड़ों से ही बनती हैं अदालतों की कुर्सियां, खिड़कियां, सीढ़ियां और अलमारियां। तुम्हारी दोस्त अपेक्षा ने लिखा है, लिखते रहती है। पिछली मुलाकात में आधा घंटा बात कर पाई। उसने लिखा है, तुम्हारे अंदर बातें भरी हुई हैं। उन बातों में क्या दिल्ली भी बची हुई है? इतना कुछ भरा हुआ है, फिर भी एक शब्द नहीं कहा। क्यों ली तुमने वापस अपनी याचिका? मैं तुम्हारे बारे में जब भी सोचता हूं, दिल्ली में कहीं भी पेड़ दिख जाते हैं। बीकानेर हाउस में मैंने ऐसा ही एक पेड़ देखा। गुलाम मोहम्मद शेख की एक बड़ी सी पेंटिंग देखने गया था। कितनी चहल पहल थी, मगर सबके चेहरे पर उदासी की रेखाएं तैर रही थीं। शायद इसलिए मैं तुम्हें यहां ढूंढने लगा। 18वीं सदी की पेंटिंग से ली गई इस नाव पर वैन गॉह और M.F. हुसैन को साथ बैठे देखा। वहीं बैठे थे रविंद्रनाथ टैगोर, तुम नहीं थे। जिस शहर की नदी सूख गई हो, वहां पर एक ऐसी पेंटिंग लाई गई है। इसका विस्तार अखबार के संसार से आगे का लगा। क्या यह किश्ती है जो तूफान में फंस गई है, या इसमें सवार लोगों के बोझ से लहरें सिमट गई हैं? इसी नाव पर एक छोटा सा पेड़ दिखा, जिस पर गौरी लंकेश और कलबुर्गी टंगे हुए हैं। दाभोलकर भी इसी पेड़ पर हैं। इन सभी का इन पेड़ों पर होना क्या कोई संयोग है? और तुम्हारा नहीं होना? इन घटनाओं को कोई पत्रकार दर्ज नहीं कर रहा। पत्रकार सरकार की तारीफ में पेंट कर रहे हैं और पेंटर पत्रकार की तरह दर्ज कर रहे हैं। उन लोगों को जिन्हें गोलियों से उड़ा दिया गया, जिन्हें जमानत नहीं मिली, इंसाफ नहीं मिला, दिल्ली के लोग पेड़ पर टांग दिए जाने के डर से आज तक सहमे हुए हैं।
एक कॉमन मैन का विश्वास न्यायिक जगत से बना है, हमें उस विश्वास को बरकरार रखने में अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि अगर लोकतंत्र में जनता का विश्वास डगमगाया तो फिर उसको सड़कों पर उतरने में देर नहीं लगेगी। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हमें भारत के लोकतंत्र के स्तंभों को और मजबूती प्रदान करनी चाहिए, जितना अच्छा हो।
यह आवाज तुम्हारी नहीं है, योगी जी की है, चिंता मत करो। चीफ जस्टिस के सामने उन्होंने यह बात कह दी। मगर उन्हें क्यों ऐसा लगा कि न्यायपालिका इंसाफ नहीं करेगी तो जनता सड़कों पर उतर आएगी? इन पेड़ों को देखो उमर, बेलें लिपट गई हैं, पेड़ और ऊंचा हो गया है। जितना ज्यादा ऊंचा होता है, बेलें उतनी ही ऊपर चढ़ जाती हैं। पेड़ों को कसने से पेड़ सड़क पर उतर आएंगे क्या? कितने दिनों से तुमने जनपद नहीं देखा होगा। जनपद की दुकानों से अब भी लड़के अपनी प्रेमिका के लिए कान की बालियां खरीद रहे हैं, रील्स बनाने के लिए। दिल्ली भर के प्रेमी भागकर सीपी ही जाते हैं, सीपी उनका तिहाड़ है। कुछ तो अब भी बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे हैं, बस का इंतजार जमानत की सुनवाई के इंतजार से भी लंबा होता है। पहले से पता होता है कि बस कहीं रास्ते में खराब हो गई होगी, जिस पर नीम की पत्ती टांग कर ड्राइवर लंच के लिए चला गया होगा। कार के डैशबोर्ड पर यह माइक नहीं है, कार परफ्यूम है। माइक का इस्तेमाल उमर अब कहां होता है? जब किसी को कुछ कहना ही नहीं, तब फिर इसका क्या काम? कोई भी माइक हाथ में लेकर तुम्हारी याचिका पढ़ने की इस शहर में हिम्मत नहीं करेगा। बस तुम्हारे बारे में कुछ रिटायर्ड जज आज भी बोलते रहते हैं।
One of the cases that has been mentioned is that of Umar Khalid asking for bail, not listed for a long time, I think more than 2 years or so, 13 adjournments. Ultimately, the lawyer said, we want to withdraw the case. Why? Because as Justice Kurian Joseph mentioned, they knew what the result is going to be. And they knew what the result is going to be because it was apparently listed before a particular bench. And they knew what the fate of that case is going to be.
इस आजाद स्पेस में जेल की तरह जीते जीते दिल्ली वालों को भूलने की आदत हो गई है। उमर खालिद, लोग तुम्हें भूल चुके हैं। इस शहर की रोजमर्रा की डायरी से तुम माइनस हो गए हो। हजारों याचिकाओं में से तुम्हारी याचिका के माइनस हो जाने के बाद भी अदालतों में सुनवाइयां बंद नहीं हुई हैं। जनपद और सीपी के पीछे के गलियारों में लोगों ने जाना बंद नहीं किया है, जहां उनकी नजर सस्ते सामान खोज रही है। इन्हें तो याद भी नहीं कि इनके बीच से एक उम्र गायब है, एक उम्र माइनस है। एक तरफ से माइनस हो जाना, माइनस मुद्रिका हो जाना है, यानी दूसरी तरफ से लौटना होता है। किसी गणित के मास्टर का काम होगा रिंग रोड पर चलने वाली बसों को माइनस और प्लस के निशान देना। प्लस वाली मुद्रिका रिंग रोड की एक साइड से चलती है, माइनस वाली बस दूसरी साइड से लौट रही होती है। तुम दिल्ली को इसी तरह याद करते हुए जेल से निकल जाया करो, अपनी कल्पनाओं में अपने बिना इस दिल्ली को देखा करो उमर खालिद। डॉक्टर एडिथ बोन इसी तरह तो घूमा करती थी। 7 साल के लिए बुडापेस्ट की जेलों में बंद कर दी गई थी। ऐसे कमरे में जहां इस तरह की हवा और रोशनी के आने पर पाबंदी थी। जेल जाने से पहले डॉक्टर बोन ने जिन जिन शहरों को देखा था, जिन जिन फुटपाथों पर चली थी, उन पर वो रोज चलने लगी। अपनी कल्पनाओं में जेल से निकल जाया करती थी और चलती थी, बहुत हिसाब से चलती थी, धीमे धीमे। कभी पेरिस, कभी मिलान, कभी वेनिस, कभी फ्लोरेंस। पांव में बेड़ियां हैं मगर मन लंदन की सड़कों पर दौड़ रहा है। डॉक्टर बोन हर दिन चला करती थी, चलने का हिसाब दिमाग में रखा करती थी कि आज लंदन की सड़कों पर कितना चलना हुआ, कहां कहां गई और कहां कहां जाना बाकी है। क्या तिहाड़ जेल की लाइब्रेरी में डॉक्टर एडिथ बोन की 7 ईयर्स ऑफ सॉलिटरी है? तुम्हारे लिए नहीं, जेल के अफसरों के लिए पूछ रहा हूं उमर। तुम भी डॉक्टर एडिथ बोन की तरह कभी जेएनयू चले जाया करो। इन दिनों वहां बोगनवेलिया की बहार है, बिना सुगंध के इस सुंदर फूल के रंगों का जलवा तुम्हें याद तो आता ही होगा। जेएनयू से 615 नंबर की बस लेकर जनपद आ जाया करो। चाहो तो पहले ही उतर जाओ और सरोजनी से अपने लिए कोई शर्ट खरीद लो और उस साथी के लिए एक जोड़ी जूते जो जेल तक चलकर आती है तुमसे मिलने। वैसे तुम वहां भी जा सकते हो जहां से तुम अपनी याचिका लेकर लौटे हो। वहीं आसपास बहुत सारे घने पेड़ हैं, उन पेड़ों को गिन सकते हो। पेड़ों की गिनती करते हुए इंसाफ की उम्मीदों के दिन भी गिने जा सकते हैं। ১৯৫৬ में जब बुडापेस्ट की खतरनाक जेल से एडिथ बोन बाहर आने वाली थी, दर्जनों कैमरों और उनके लेंस बैरल की तरह निशाना साध कर इंतजार कर रहे थे। वे अपने कैमरे में बोन के चेहरों की झुर्रियां दर्ज करना चाहते थे, उनकी धसी हुई आंखों को कैप्चर कर लेना चाहते थे। मगर 7 साल तक जेल में रहने के बाद 68 साल की यह महिला जब बाहर आई, तब ठीक तुम्हारी तरह मुस्कुराती हुई, जैसे तुमने हवा में हाथ उठाए थे और हंस दिए थे किसी बच्चे की तरह। बोन उस दिन आसमान की तरफ देखती हुई तेज कदमों से सड़क पार कर गईं। किसी को लिखने के लिए दुख की झलक नहीं मिली, एक रिपोर्टर ने बहुत मुश्किल से लिखा। उसने लिखा, डॉक्टर बोन लड़खड़ा रही थी। उस बेचारे को पता नहीं था कि जेल वालों ने उन्हें गलत नंबर के जूते दे दिए थे। तुम्हारे बारे में भी तो मीडिया ऐसे ही लिखता है, वह तुम्हें टूटा हुआ देखना चाहता है, तुम हंसता हुआ दिख जाते हो। डॉक्टर एडिथ बोन ने टॉलस्टॉय की कहानी के कैदी से यह सब सीखा था, जेल के कमरे में बंद होते हुए भी बाहर निकलकर घूमने का ख्याल। मैं भी उस कैदी के बारे में पढ़ना चाहता हूं जो जेल के बंद कमरों से काल्पनिक यात्राओं पर निकल जाया करता था। मैंने टॉलस्टॉय की एक भी किताब नहीं पढ़ी, वॉर एंड पीस का तो नाम मत लो। दैनिक जागरण के पन्ने पलट कर ही वॉर एंड पीस पढ़ने की भूख मर जाती है। हजार शेक्सपियर, दर्जनों ऑस्टिन, सैकड़ों प्रेमचंद से विरक्ति हो जाती है। उन्हें पढ़ने की समझ से मुक्ति का मार्ग है दैनिक जागरण। तुमने अपनी खबर अखबार के किस पन्ने पर देखी थी? किसी ने याचिका वापस ली है, उसकी खबर किस पन्ने पर छपी है? पेड़ों से पूछो जिन्हें काट कर अखबार के ये कागज बनते हैं। उन अखबारों में गजा की खबरें अब नहीं छपती हैं। नेतन्याहू एक पूरी आबादी को नेस्तानाबूद कर देने के फैसले पर अड़े हैं। गजा में मारे गए बच्चों की कब्र पर जो इमारतें बनेंगी उसके लिए भारत से मजदूर भेजे जा रहे हैं। इसराइल को इंसान नहीं मजदूर चाहिए। इन लड़कों में इसराइल जाने का उत्साह अमरीका जाने से ज्यादा है। यहां दिल्ली में कुछ लोग जुटे हुए हैं गजा में नरसंहार के खिलाफ अपनी आवाज दर्ज कराने। इन्हें पता है खबर कहीं नहीं छपेगी, मगर जमा हो रहे हैं। तुम होते तो तुम्हारा भाषण सबसे अलग होता। यही लोग तुम्हारे लिए भी जमा होते हैं। यही लोग गौरी लंकेश के लिए भी जमा हुए थे। उमर खालिद, दिल्ली के पेड़ों पर केवल प्रेत नहीं होते हैं, प्रेतात्माएं नहीं होती हैं, अंतरात्माएं भी होती हैं। उन अंतरात्माओं में तुम बहुत याद किए जाते हो। हुकूमत अगर प्रेतात्मा है तो यही लोग अंतरात्मा हैं। तभी तो कुछ लोग अब भी तुम्हारी बात करते सुने जाते हैं।
द ग्रेटेस्ट ब्लो टू डेमोक्रेसी इज दैट द फोर्थ पिलर हैज फेल्ड द कंट्री। फॉरगेट अबाउट द फर्स्ट थ्री पिलर्स, फोर्थ पिलर इज द मीडिया। दे हैव फेल्ड टू डिफेंड डेमोक्रेसी, दे हैव फेल्ड to defend the constitution, they have failed to defend the truth.
तुम्हारे अब्बू जेल में होने के दिन गिनते हैं, 100 दिन, 500 दिन, 1000 दिन। उन तमाम दिनों का हिसाब लिए प्रेस क्लब में दिखाई दे जाते हैं। बाप तो बाप होता है। जिस दिल्ली में तुम नहीं हो वहां तुम्हारे होने की जिद अब्बू के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। उस दिन प्रेस क्लब में बहुत सारे कैमरे थे, मोबाइल कैमरे, मगर अखबारों में खबर नहीं थी। ये वो कैमरे नहीं जो मीडिया हाउस से आते हैं, उनके हैं जो अपने कंधे पर मीडिया की लाश ढो रहे हैं। तुम भी उमर न्यायपालिका की अंतरात्मा के दरवाजे पर कब तक खड़े रहोगे? कितनी बार जाओगे? कितनी बार लौटोगे? न्याय की अंतरात्माएं प्रेतात्मा बनकर दिल्ली के आसमान में उड़ना चाहती हैं। उड़ने दो ना। तुम्हें पता है इन दिनों दिल्ली में नीदरलैंड से ट्यूलिप के फूल मंगाए गए हैं, 3 लाख ट्यूलिप। रेडियो पर जॉकी कुछ इसी तरह के घोड़े हांक रहा था, नीदरलैंड से ट्यूलिप आए हैं, नीदरलैंड से ट्यूलिप आए हैं। 80 लाख से अधिक रुपए खर्च हुए हैं दिल्ली में ट्यूलिप लाने के लिए। प्रदीप कृष्ण ने लिखा है, ऐसे तो दिल्ली में ये लोग पोलर बेयर भी पाल कर दिखा देंगे। तब तुम एक दिन के लिए जमानत मांग लेना, कहना कि दिल्ली में पोलर बेयर आया है, मुझे सफेद भालू देखनी है। बादशाह चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। वो एक दिन इसी तरह चांद उतार लाएगा। होने को तो श्रीनगर में भी ट्यूलिप होते हैं, मगर नीदरलैंड से ट्यूलिप मंगाने की बात कुछ और ही होती है। आत्मनिर्भर दिल्ली थोड़ी सी ग्लोबल होती है। दिल्ली में ट्यूलिप को देखते देखते मुझे जरहुल की याद आ गई। तुमने जरहुल के फूलों के बारे में सुना है? मैंने नहीं सुना था। आदिवासी कवि जसिंता केरकेट्टा, जो जंगलों में रहती है, दिल्ली में नहीं रहती, जंगलों को लिखती है, दिल्ली पर नहीं लिखती। जसिंता ने जरहुल पर कविता लिखी है। जरहुल की यह तस्वीर जसिंता ने तुम्हारे लिए भेजी है। दरअसल जसिंता को भी जरहुल का पता नहीं था। सिब्रियुस एक्का ने उसे जरहुल के बारे में बताया। गुमला जिले के सड़की पहाड़ पर जरहुल के फूल खिलते हैं। जसिंता की कविता की किताब आई है, प्रेम में पेड़ होगा। जंगल से गुजरते हुए उसने ओक की पत्तियों को चूमा, जैसे अपनी मां की हथेलियों को चूमा। कहा, यह पेड़ मेरी मां का हाथ पकड़कर बड़ा हुआ है, इसके पास आज भी स्पर्श है। जंगल का हाथ पकड़कर मेरे पुरखे भी बड़े हुए, वे नहीं हैं पर यह आज भी वहीं खड़ा है। इसने मेरे पुरखों की स्मृतियों और स्पर्शों को बचा कर रखा है। उन्हें महसूस करने के लिए मैं इन्हें छूता हूं, चूमता हूं, इनसे प्यार करता हूं। तुम्हारी याचिकाओं को पेड़ों की जरूरत है, पेड़ों के जैसे धीरज की। बारिश में भीगते रहने का धीरज पेड़ों के पास ही होता है। इस दिल्ली में बहुत से पोस्टर लगे हैं, सर्वव्यापी प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के झंडों से भरी दिल्ली में उनके कटआउट यहाँ के पोल और पेड़ों पर लगा दिए गए हैं। इन्हीं पेड़ों पर तुम्हारी याचिका के पन्ने टांगे जा सकते हैं। जेल में उमर खालिद के कितने दिन हो गए, उनका नंबर लिखा जा सकता है। दिल्ली के पेड़ों पर प्रधानमंत्री के पोस्टर हैं, उमर खालिद के पोस्टर क्यों नहीं हो सकते। होली के पोस्टर अब लगने वाले हैं। इन्हीं पोस्टरों पर लिखना चाहता हूं, उमर खालिद जेल में है, अदालतें आजाद हैं, अदालतें पेड़ हैं, पेड़ों पर पोस्टर टंगे हुए हैं, पेड़ों को भी तिहाड़ में बंद कर दिया गया है। यह ओखला है जामिया। मेट्रो की खिड़की से लगता है सारा मोहल्ला पेड़ों के नीचे डूब गया है। तुम्हें जेल की दीवारों से यह सब याद आता है क्या? क्या शाहीन बाग की याद आती होगी? तब वहां कितने लोग आया करते थे, उन लोगों की याद आती है? सब अपनी अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं, बहुत मिस करते होंगे। आया इसी में डेमोक्रेसी पर बोलना। ऑटो में तुम उस दिन किसके साथ बहुत दूर तक निकल गए? इतनी सारी यादों के लिए जेल में कोई अलमारी होती है? लेटकर सपने देखने के लिए कोई बिस्तर होता होगा? क्या तुमने ख्वाब में कभी अदालत देखी है? कोर्ट रूम के भी नंबर होते हैं, जैसे बैरकों के नंबर होते हैं। शर्जिल इमाम मिलता है क्या? क्या कभी गुलफिशा से मुलाकात हुई? नताशा और देवांगना के पत्र तो आते ही होंगे। बनु ज्योत्सना ने बहुत दिनों से कुछ लिखा भी नहीं। दिल्ली के फेफड़े में कार्बन भर गया है और तानाशाह पत्र भी नहीं पढ़ते हैं। दिल्ली बिना मर्ज की मरीज लगती है। इस बीमार शहर में हर दिन लाखों पन्नों पर फैसले टाइप होते हैं। सिर्फ तुम्हारी बारी का इंतजार है। वेटिंग फॉर गोडो की तरह तुम्हारा इंतजार अंतहीन है। मैंने सुना है हत्या के बाद किसी अपराधी को बहुत भूख लगती है। वो जमकर खाता है, फिल्में देखता है और किसी दूसरे शहर में भाग कर उस शहर को देखने लग जाता है। तुम्हारे बिना दिल्ली ऐसी ही लगती है, ऐसे लोगों से भरी हुई जो किसी दूसरे शहर में इंसाफ की हत्या के बाद भाग कर यहां आ गए हैं। उमर, तुम्हें कोर्ट ले जाने वाली बस की खिड़की से कुछ तो दिल्ली दिखती होगी। यह आखिरी मेट्रो है। क्या तुमने कभी किसी आखिरी मेट्रो में सवारी की है? किसी आखिरी मेट्रो में तुम्हारी उस याचिका को रख देता हूं, उस सीट पर जिस पर अगली सुबह लोग झपट्टा मारेंगे बैठने के लिए। दिल्ली में इंसाफ की लूट कोई बड़ी घटना नहीं है उमर, और सीट की लूट से बड़ा इंसाफ नहीं है।